yajante shvatayan vitha te bimam evakonteya yajanti abhidhi purvakam. Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way.
जो लोग दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं हे कुंती के पुत्र वो वास्तव में मेरी ही आराधना कर रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर रहे.
The verse we are reading today is from the 9th chapter of Bhagavad Gita.
आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये गीता के 9वें अध्याय से है.
Which is entitled The Most Confidential Knowledge.
जिसका शीर्षक है कि सबसे गुह्य ज्ञान.
Throughout the world, the Lord has revealed various systems of religion.
अलग दुनिया में भगवान ने अलग अलग धर्म के जो है विधियां बताई हैं.
The ultimate perfection of all religion is unmotivated, uninterrupted devotion to the absolute truth.
परम सत्य की और अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना यही धर्म का उद्देश्य है.
Within the Bhagavad Gita and other great literatures, the absolute truth is declared to be the supreme personality of Godhead, Sri Krishna.
भगवत गीता में और दूसरे वैदिक शास्त्रों में जो परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है ऐसा बताया गया है.
Krishna has many names, and he has revealed himself in many forms. Throughout the ages,
भगवान के अनेक नाम हैं और वो अनेक रूप में जो है अलग-अलग युगों में प्रकट होते हैं.
But it is Krishna who is the source of all these glorious incarnations.
लेकिन कृष्णा हैं जो कि सारे अवतारों के स्तोत्र हैं.
And some worship according to the regulations of the scriptures, various demigods or devatas. For the acquisition of higher realms of material enjoyment.
कुछ जो है देवताओं की आराधना करते हैं ये सोचकर कि ज्यादा भौतिक इंद्र तृप्ति प्राप्त करेंगे.
They are certainly elevated in the sense that, especially in this age of Kali Yuga, people are aspiring for such material enjoyment without accepting any higher powers.
कम से कम वो थोड़े उच्च स्तर पे हैं क्योंकि आजकल तो कलयुग में इंद्र तृप्ति लोग करना चाहते हैं बिना किसी उच्च शक्ति को स्वीकार किए.
एंड देयरफॉर देयर इज नो फेथ और रेगुलेशन इन देयर लाइफ.
इसलिए उनके जीवन में कोई श्रद्धा या नियम नहीं है.
फॉर सच फूलिश पीपल हु टेक द गोल ऑफ लाइफ टू हैव गुड फैमिली टू हैव नाइस सिक्योरिटी टू हैव गुड प्लेजर्स एंड गुड हेल्थ. To them, worship of the demigods is a great stage of advancement over thinking that they are the doers and the controllers of their own destiny.
जो लोग इंद्र तृप्ति चाहते हैं अच्छी तबीयत वगैरह चाहते हैं इस तरह के सुख चाहते हैं उनके लिए देवताओं की आराधना स्वीकार करना ये एक थोड़ी सी उच्च अवस्था है.
But herein Krishna is explaining that actually, whatever we worship, it is ultimately meant for Him.
यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में हम जो भी आराधना करते हैं वो उनके लिए ही है.
Because He is the source of everything.
क्योंकि वे सब चीजों के स्तोत्र हैं.
अहम् सर्वस्य प्रभवो मत्स्य सर्वं प्रवर्तते. Everything is coming from Krishna.
सब कुछ श्री कृष्ण से ही आ रहा है.
And whatever powers His servants, the demigods, may have, they are all deriving from Him alone.
और जो भी शक्ति देवताओं में है वो भी उन्हीं से मिल रही है उन्हें.
Just like in government, whatever government official may have the power to give you, he is getting from the king.
जैसे सरकार में किसी भी के पास कोई शक्ति है, वो राजा से ही आ रही है.
So Krishna explains that those who worship such demigods for material acquisitions are worshiping him in the wrong way.
तो भगवान बता रहे हैं कि जो देवताओं की आराधना करते हैं भौतिक लाभ लेने के लिए, वो गलत तरीके से मेरी आराधना कर रहे हैं.
And those who worship him for material acquisition, they are less fortunate, but they are more elevated because at least they have understood who is the source of everything.
और जो भगवान की आराधना करते हैं भौतिक लाभ के लिए, वो कम से कम ये तो समझ गए हैं कि सब चीजों के स्तोत्र क्या हैं.
There is a verse in Srimad Bhagavatam that whether you worship the Supreme Lord Krishna with all material desires, with no material desires, or with desire for liberation, ultimately you are fortunate because you will become purified and achieve the ultimate goal because you are remembering Krishna.
श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि चाहे आपके पास कोई कामना ना हो, या मोक्ष की कामना हो या सर्व कामना हो, अंत में आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे.
Material enjoyment and material suffering are inseparable.
भौतिक सुख और दुख, इनको अलग नहीं किया जा सकता.
To enjoy material life means to suffer material life.
भौतिक जीवन में सुख भोगने का मतलब यह है कि भौतिक दुख प्राप्त करना.
Real knowledge means to detach ourselves from both.
सच्चे ज्ञान का अर्थ है कि दोनों से अनासक्त रहना.
And to attach ourselves to that which is permanent, which is the service to the Lord.
और उस चीज से अपने आप को लगाना जो कि नित्य है, और वो है भगवान की सेवा.
This is education that is beneficial to the elevation of the soul.
और ये जो है, ये ज्ञान है जो कि आत्मा के लिए लाभकारी है.
Various subject matters which we teach the young in the world today are actually of no benefit to the soul.
अनेक चीजें जो कि हम पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, वो वास्तव में आत्मा के लिए कोई लाभकारी नहीं है.
If we do not become detached from the egoistic idea that I am the enjoyer and attached to the truth that Krishna is the supreme enjoyer, then all of our efforts will simply cause us bondage and ultimate suffering.
अगर हम ये नहीं समझते कि मैं भोक्ता नहीं हूँ, तब तक जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे दुख और बंधन का कारण बनेगा.
However great we may be,
हम चाहे कितने महान क्यों ना हों.
In this regard, there is a very nice story.
इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कथा है.
When Lord Krishna appeared in this age of Kali Yuga in his most merciful form of Lord Chaitanya, he lived in Navadvip, which was at that time the most famous place for scholarship in all of the world.
जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए आज से 500 वर्ष पहले, तो वो नवद्वीप में रहे, जो कि विद्वता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है.
And just as we are proud of what we could do, we are also proud of our family, what they can do, and that extends to pride of our caste or our community, or pride of our village, or pride of our nation.
जैसे हमें अभिमान होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसी तरह से हमें अपने जाति का, अपने गांव का, शहर का और देश का अभिमान होता है.
In this way, the conception of false pride, which is based on the illusion that I am this body, and those things in relationship to my body are mine, extends in so many ways to keep us in illusion.
तो ये जो मिथ्या अभिमान है कि मैं ये शरीर हूँ और जो मेरे सभी शरीर संबंधित है वो मेरा है, ये हमें बहुत बंधन में बांध के रखता है.
The people of Navadvip were so proud that they were the undefeatable high seat of learning in all of the world.
नवद्वीप के वासी जो है इतने अभिमानी थे कि पूरी दुनिया में उन्हें कोई विद्या में परास्त नहीं कर सकता.
And there were thousands upon thousands of great, great scholars who resided in Navadvip.
ऐसे हजारों विद्वान थे जो कि नवद्वीप में निवास करते थे.
And often some of them had thousands and thousands of students.
और उनमें से कईयों के जो हैं हजारों शिष्य थे.
People would come from young persons who were thirsty for knowledge were coming from all directions to find a suitable teacher in Navadvip.
चारों दिशाओं से लोग आते थे एक योग्य शिक्षक को प्राप्त करने के लिए नवद्वीप में.
And of these tens and thousands of great pundits, they all had big titles like Bhattacharya, Mishra, Acharya, Pandit, and so forth.
और इन सब के पास अनेक शीर्षक थे जैसे भट्टाचार्य, मिश्र वगैरह वगैरह.
And each one, his only business was to debate with other teachers to prove that they were better.
और उनका कार्य यही था कि दूसरे शिक्षक से तर्क वितर्क करके ये सिद्ध करना कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं.
And every student was always fighting with other students, arguing whose teacher was better.
और हर एक शिष्य या दूसरे शिष्यों से इस तरह वाद विवाद करते हैं ये बताने के लिए कि कौन शिक्षक ज्यादा अच्छा है.
Sometimes the children, they would play in the Ganges and they'd go up to another student and say, my teacher is better than yours, your teacher is ignorant.
तो कभी एक शिष्य दूसरे शिष्य को कहता है कि मेरा जो शिक्षक है ज्यादा अच्छा है, दूसरा तुम्हारा शिक्षक जो है अज्ञान में है.
Your teacher doesn't even know Sanskrit grammar properly, but my teacher knows everything.
आपके शिक्षक जो है संस्कृत व्याकरण भी ठीक से नहीं जानते हैं, बल्कि मेरे शिक्षक सब कुछ जानते हैं.
And the other child would say, your teacher is a fool, a puffed up, proud fool. My teacher can destroy him within seconds.
और वो दूसरा कहता है कि तुम्हारा जो शिक्षक है वो मूर्ख है और मेरा शिक्षक उसको कुछ ही सेकंड्स में परास्त कर सकता है.
And then they'd start splashing water on each other.
और फिर वो एक दूसरे पर पानी फेंकने लग जाते हैं.
And sometimes they would throw sand at each other.
कभी-कभी बालू एक दूसरे पर फेंकते
हैं. And sometimes they would beat each other with their fists.
कभी-कभी मुक्कों से एक दूसरे को मारने लग जाते
हैं. And after one would beat the other, he would jump in the Ganges and swim to another place.
और मारकर फिर वो गंगा जी में छलांग लाकर दूसरी जगह तैर के चले जाते.
This way, everyone was so proud.
इस तरह से हर एक व्यक्ति बहुत अभिमानी था.
But when it came to someone from outside coming to conquer the pundits of Navadvip, then they all came together to decide how to defend our prestige.
और अगर कोई बाहर से आक्रमण करने आता तो फिर वो एकत्र हो जाते और निश्चय करते कि कैसे अपने अभिमान की सुरक्षा की जाए.
There was a great pundit. His name was Keshava Kashmiri.
ऐसे एक महान पंडित थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी.
And he was known as the Digvijay Pandit.
उनको दिग्विजय पंडित कहा जाता था.
Because he had performed great, great tapasya.
क्योंकि उसने बहुत तपस्या की थी.
And he had become so dear in his worship to Goddess Saraswati that the Goddess of Learning herself accepted him as her own son.
और उन्होंने इतनी तपस्या की थी कि सरस्वती माता जी खुद उनको अपने पुत्रवत स्वीकार करती थी.
He worshipped this demigod perfectly according to the Vedic injunctions.
वो इस देवी की पूजा जो है वैदिक शास्त्रों के अनुसार करते थे.
With such sincerity and devotion.
बहुत सच्चाई के साथ और भक्ति के साथ.
But not real devotion, materialistic devotion.
लेकिन वो वास्तविक भक्ति नहीं बल्कि भौतिक भक्ति थी.
Because when Saraswati, pleased with his worship, appeared to him, he asked for the benediction that let my name and fame be as the greatest scholar in all of the world.
क्योंकि सरस्वती जब उन पर प्रसन्न हुई तो उन्होंने ये मांगा कि मेरा जो नाम और ख्याति है पूरे दुनिया में सबसे बड़े विद्वान के रूप में हो जाए.
Let me defeat everyone in all directions.
मैं सब दिशाओं में सबको परास्त कर सकूं.
Give me mastery in Karmakanda, Gyanakanda, astronomy, logic, in all the six systems of philosophy. Let me be unparalleled and undefeatable in all these subject matters of spiritual science.
मुझे ये सब आध्यात्मिक विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में और तर्क वितर्क में सब में जो है कोई मुझे परास्त नहीं कर सके.
And there, let there not be a man or a demigod that can possibly stand before me.
ऐसा कोई मानव या देवता नहीं हो जो कि मेरे सामने खड़ा रह सके.
So Goddess Saraswati gave him this power.
और इसलिए सरस्वती देवी ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की.
And he became very, very wealthy.
और वो बहुत संपत्तिशील हो गया.
Wherever he would go, he would defeat people and he would win big contests and get more and more and more wealth and more prestige. And people were surrendering to him and becoming his follower.
और जहाँ भी जाते वो लोगों को परास्त करते और कई लोग उनके समर्पण करते और उनके शिष्य बन जाते.
And he had a certificate called the Vijay Patra.
और उनके पास एक सर्टिफिकेट था जिसको विजय पत्र कहा जाता.
Any scholar he defeated, or any city where he defeated all the scholars, everyone had to sign that I was defeated by Keshav Kashmiri.
जो विद्वान उनसे द्वारा परास्त होते उन्हें यह हस्ताक्षर करना होता कि मैं दिग्विजयी केशव कश्मीर के द्वारा परास्त हो गया हूं.
So his false pride became greater even than his learning.
और उनका मिथ्या अभिमान जो है वो विद्वता से भी ज्यादा बढ़ गया.
And he traveled here, there and everywhere.
वो यहां वहां सब जगह पर भ्रमण करने लगे.
He traveled to every province of this great land of Bharatvarsha.
वो भारत के हर एक राज्य में भ्रमण करने लगे.
And his fame was spreading so much, and then he decided to come to the ultimate seat of all scholars, Navadvip.
और उनका यह सब जगह फैल रहा था और उन्हें अंत में निश्चय किया कि अब मैं विद्वता की राजधानी नवद्वीप में प्रवेश करूंगा.
And when he entered into Navadvip, he came with big beautiful bands marching and chanting his glories.
और जब नवद्वीप प्रवेश किया तो उनके आगे जो है कई बैंड बजाए जा रहे थे.
There were beautifully decorated horses and elephants and chariots and palanquins and thousands of followers and disciples all with him as he came into the city.
जैसे नवद्वीप में उन्होंने प्रवेश किया तो आगे हाथी, घोड़े, रथ और कई हजारों शिष्य जो है वो उनके आगे चल रहे थे.
And he publicly challenged anyone to stand before him in a debate.
और उन्होंने चुनौती दी कि मेरे सामने तर्क वितर्क में कोई भी सामने आ जाए.
The very, very proud, learned teachers of Navadvip became completely miserable.
और बहुत से जो अभिमानी शिक्षक थे वो सब बड़े दुखी हो गए.
They couldn't even study their books anymore.
वो अपने पुस्तकों का अध्ययन भी नहीं कर पाए.
They were just sitting and worrying and worrying and worrying.
वो बैठे हुए बस चिंता ही चिंता करते जा रहे थे.
And they had meetings amongst themselves to discuss what to do.
और इस तरह से वो आपस में जो है मीटिंग कर रहे थे निश्चय करने के लिए.
He has worshipped the goddess Saraswati and he has received her boons, and therefore whenever he speaks, Goddess Saraswati personally, directly appears on his tongue and speaks through him.
इन्होंने सरस्वती देवी की आराधना की है और जब वो बोलते हैं तो स्वयं सरस्वती साक्षात जो है उनकी जिह्वा पर प्रकट होती हैं.
How is it possible that any human being could possibly stand before him?
ये कैसे संभव है कि कोई भी मानव उनके सामने जो है टिक सके?
The great demigoddess Saraswati Devi is the source of all knowledge, learning, poetry and arts within this world.
इस दुनिया में सब विद्या, सब कविता, सब की जो है देवी सरस्वती ही जो है स्त्रोत्र हैं.
If she is personally appearing in a person's tongue, who could possibly challenge her?
और वह स्वयं यदि किसी की जीवा पर प्रकट हो रही हैं, तो कौन उन्हें चुनौती दे सकता है?
So they didn't know what to do. Individually, all of their reputations would be destroyed, and if he defeated everyone in Navadvip, Navadvip would just become an ordinary place and lose its entire prestige.
तो व्यक्तिगत रूप से भी लोग परास्त हो जाएंगे और अगर सबको उन्होंने परास्त कर दिया तो नवद्वीप जो है बिल्कुल एक साधारण स्थान बन जाएगा.
So throughout all of Navadvip Dham, there was only one discussion: what to do to defend ourselves against Digvijay Pandit.
सारे नवद्वीप में यही चर्चा हो रहा था कि अब क्या किया जाए अपने आप को ये दिग्विजय से बचाने के लिए.
In this material world, the standard of success is wealth, reputation, influence over others. But all of these things are temporary. They cannot give any satisfaction to the soul. And ultimately, you cannot take any of it with you at the time of death.
इस दुनिया में विद्या, यश, दूसरों पर प्रभाव ये महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये सब क्षणिक हैं और कोई भी चीज को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते और ये आत्मा को संतुष्टि नहीं प्रदान करते.
Therefore, it is all useless.
इसलिए ये सब बेकार हैं.
But people who have these gifts of God, they become so infatuated, so intoxicated, thinking that they are the enjoyers and thinking that they are superior to others.
लेकिन जिनके पास ये चीजें होती हैं, वे इतने अभिमानी हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं और दूसरों से श्रेष्ठ हैं.
And foolish people who are attached to material life, they are very fearful of someone who is greater than themselves in such materialistic affairs.
और मूर्ख लोग जो है वो डरते हैं उन लोगों से जिनके पास ये चीजें जो ज्यादा मात्रा में हैं.
Jiva jiva sa jivanam. This is the law of nature according to Sri Narada Muni, that one living entity is food for another living entity.
ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव जो है दूसरे जीव के लिए भोजन है.
Amongst the animals, the animals with four legs eat the animals with no legs.
हम देखते हैं जानवरों में जो चार पैर वाले जानवर होते हैं वो दूसरे जानवरों जिनके पैर नहीं है उनको खाते हैं.
And animals with two legs sometimes eat animals with four legs.
और कभी कभी दो पैर वाले जानवर जो है वो चार पैर वाले जानवर को खा जाते हैं.
In this way, the weak is the food for the strong.
और इस तरह से जो कमजोर आदमी है वो दूसरों के लिए भोजन बन जाता है.
And in human society, the poor are exploited by the rich.
और मानव समाज में गरीबों का जो है अमीरों द्वारा शोषण किया जाता है.
The intelligent exploit the less intelligent.
जो बुद्धिमान लोग हैं वो कम बुद्धि वालों का शोषण करते हैं.
Those in political power exploit those who have no such power.
जिनके पास राजनीतिक शक्ति है वो उनका शोषण करते हैं जिनके पास ऐसी शक्ति नहीं है.
So those who have this greatness, they are very proud, and those who have not this greatness, they are very fearful.
और जिनके पास शक्ति है वो अभिमानी हो जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो बहुत डर जाते हैं.
So this was the situation in Navadvip.
तो ये स्थिति थी नवद्वीप में.
At the time, Lord Chaitanya had not revealed his supreme opulence of the personality of Godhead.
उस समय तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट नहीं किया था.
Although he charmed the hearts of everyone by his yogamaya potency, no one understood him to be the supreme personality of Godhead.
हालांकि उन्होंने सबके मन को मोहित किया था, लेकिन उनकी योगमाया शक्ति के द्वारा कोई यह समझ नहीं सका कि वे भगवान हैं.
He was Nimai Pandit, the greatest learned scholar in all of Navadvip.
वो इस तरह जाने जाते थे कि ये निमाई पंडित हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं नवद्वीप के.
Although he was just a young boy, even the very elderly wise bhattacharyas and pandits were very fearful of him.
हालांकि वो एक नौजवान व्यक्ति थे, लेकिन बड़े-बड़े जो भट्टाचार्य थे वो भी बहुत डरते थे उनसे.
He would sit on the banks of the river Ganges every day, and there thousands of students would gather around in big circles around him and listen to him lecture.
वो गंगा जी के तट पर बैठते और हजारों शिष्य उनके आसपास बैठ जाते और उनके बातों को सुनते थे.
One day, as Nimai Pandit was about to begin his lecture, his students told him that, "Have you heard the news? This Digvijay Pandit has come to Navadvip."
और एक बार जब वो इस तरह गंगा जी के तट पर बैठे थे तो उनके शिष्यों ने बताया कि आपने समाचार सुना कि दिग्विजय पंडित यहाँ आए हैं.
He has conquered every scholar in all the world.
उन्होंने पूरे दुनिया में हर एक विद्वान को परास्त कर दिया है.
He is so intelligent that no one even understands what he's saying.
इतने बुद्धिमान है कि कोई समझ नहीं पाता वो क्या बोल रहे हैं.
When someone speaks in such high language that you don't even understand what he said, how can you possibly challenge him?
जब कोई इतने उच्च भाषा में बात करता है कि हम समझ ही नहीं सके क्या बोल रहे हैं, तो उसको कैसे चुनौती दे सकते हैं?
And he has total mastery over every type of science, every book and every scripture.
उनके हर एक विज्ञान हर एक शास्त्र पर पूर्ण विद्वता है.
Because Goddess Saraswati resides on his tongue.
क्योंकि सरस्वती देवी जो है उनकी जीवा पर वास करती हैं.
And he has come with elephants and horses and chariots and great wealth and opulence and so many followers, and all the pandits and teachers in Navadweep are completely in distress, not knowing what to do.
वो हाथी रथ और घोड़ों के साथ अनेक शिष्यों के साथ आए हैं और नवद्वीप के सब वासी जानते नहीं हैं, दुखी हैं कि क्या किया जाए अभी.
Lord Chaitanya smiled.
चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे.
He said that the Supreme Personality of Godhead does not tolerate anyone becoming too proud of the gifts that the Lord has given him.
उन्होंने ऐसा बताया कि भगवान कभी भी अभिमान को सहन नहीं करते, उन चीजों का अभिमान जो वास्तव में उन्हीं के द्वारा दिए गए हैं.
A person who actually has good qualities is similar to a tree that has many ripe fruits. Both bow their head at all times in great humility.
जिस व्यक्ति में वास्तविक अच्छे गुण होते हैं वो उस पेड़ के समान है जिसमें पके हुए फल हैं, क्योंकि दोनों ही जो है हमेशा अपने को झुका के रखते हैं.
But a person who has no real good qualities stands very high, thinking himself better than others.
लेकिन जिसमें कोई सद्गुण नहीं है वो बड़े ऊंचे खड़े रहते हैं ये सोचकर कि वो दूसरों से श्रेष्ठ हैं.
रावणा, नाहुषा, दंतवाक्रा, हिरण्यकशिपु, they were all very, very great, powerful people who thought they could conquer everyone.
रावण, हिरण्यकशिपु वगैरह सब शक्तिशाली अभिमानी व्यक्ति थे.
But ultimately, the Supreme Lord crushed all their pride into powder.
वास्तव में अंत में जो है भगवान ने उन सब की शक्ति को चूर-चूर कर दिया.
Similarly, you will see that this great Digvijay Pandit, he will be crushed to powder, and all of his pride will be completely finished right before your eyes.
और आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने भगवान के द्वारा इनका सारा अभिमान जो चूर चूर कर दिया जाएगा.
Because the Lord will never tolerate such pride.
क्योंकि भगवान जो ऐसा अभिमान कभी सहन नहीं करेंगे.
And we see in this world those who are great, great scholars or great, great conquerors or great athletes or great musicians, whatever they are great and very proud, how long do they maintain their pride?
हम देखते हैं कि चाहे कोई बड़े बड़े योग्य व्यक्ति हो अपने अपने क्षेत्र में, वो कितना समय तक अपने अभिमान को बनाए रख सकते हैं.
It is inevitable. Either someone comes by better than them and crushes them,
या तो उनसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आकर उनको चूर चूर कर देते हैं
and humiliates them before the whole world,
और दुनिया के सामने उनका अभिमान चूर कर देते हैं,
or in the force of time they become old and senile and they lose their intelligence, they lose their wealth, they lose their influence, they lose their strength,
और या बुढ़ापे के कारण जो है वो अपने बुद्धि को अपने शक्ति को खो देते हैं,
or ultimately in the form of death, which is inevitable, they just have to lay down and prostrate themselves before material energy.
और अगर कुछ नहीं हो तो समय के प्रभाव से अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो भौतिक शक्ति के सामने जो है गिर पड़ते हैं.
The dead body cannot defend themselves in any way.
जो मृत शरीर होता है वो तो किसी भी रूप में अपनी रक्षा नहीं कर सकता.
At that time, Lord Chaitanya began to think, the Lord is so merciful and so compassionate. He was thinking, I will defeat this Digvijay Pandit.
भगवान कितने दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि मैं इस दिग्विजय पंडित को परास्त कर दूंगा.
But he is
so proud. He's so addicted to victory that if I defeat him in front of a large group of people, it will be so painful for him, he will die.
लेकिन ये इतना अभिमानी है कि अगर सबके सामने इनको मैं हरा दूंगा तो उनके अभिमान के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी.
You see this Digvijay Pandit, he was so proud. When he would challenge someone, he would make a big spectacle and invite so many thousands of people to watch his opponent be destroyed.
ये दिग्विजय पंडित जब किसी को चुनौती देते तो हजारों लोगों को बुलाते तमाशा देखने के लिए और सबके सामने दूसरों को परास्त करते थे.
So Lord Chaitanya was thinking, I will defeat him, but I must keep his honor intact.
तो महाप्रभु सोच रहे थे कि मैं उसको परास्त करूंगा लेकिन उसके आदर को बनाए रखूंगा.
Just at that moment, when he was thinking in this way, by his own divine arrangement, being the super soul in everyone's heart, the Digvijay Pandit arrived on the bank of the Ganges.
जब वो ऐसा सोच ही रहे थे तो क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में है तो उसी समय दिग्विजय पंडित ने प्रवेश किया.
And he saw this large body of students all gathered round, and in the center was this most beautiful, charming, and effulgent young boy.
और उन्होंने देखा कि इतने हजारों शिष्य हैं और बीच में ये बहुत ही सुंदर मोहक जो नौजवान व्यक्ति हैं.
And he was standing from a distance in the back and looking.
वो दूर से ही जब पीछे से देख रहे थे.
And he was wondering, who is this beautiful, beautiful child with such a charming golden complexion?
वो सोच रहे थे कि ये कौन इतना सुंदर सुवर्ण वर्ण वाले बालक हैं.
And then he came into the crowd and he asked one of the students, who is this?
और वो बीच में आकर एक किसी से पूछे कि ये कौन है.
And the student replied, this is the famous Nimai Pandit.
और शिष्य ने जवाब दिया कि ये बहुत ही मशहूर निमाई पंडित हैं.
And then Lord Chaitanya saw him.
और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें देखा.
And he very, very respectfully stood up to receive him.
और बड़े आदर पूर्वक खड़े होकर उनका स्वागत किया.
And offered him a respectable seat.
और उनको एक आदरणीय आसन दिया.
And very slightly he smiled at him.
और बहुत थोड़ा सा उनकी ओर मुस्कुराए.
And glanced upon him with his merciful glance.
और अपनी कृपा दृष्टि दिखलाई.
And they spoke so many nice words to each other.
और उन्हें एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे शब्द कहे.
And then Nimai Pandit said that you are celebrated as the greatest, greatest scholar in all of the world. Will you kindly purify our hearts by composing beautiful poetry in praise of Mother Ganga?
तो निमाय पंडित ने बताया कि आप तो पूरे दुनिया में विख्यात हैं, क्या आप हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे गंगा जी के बारे में कुछ श्लोकों की रचना करते हुए.
And immediately he began to speak.
और तुरंत उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया.
His voice was so powerful and so sweet that it rumbled like thunder.
और उनकी आवाज बहुत शक्तिशाली और बहुत मीठी थी.
It was so powerful. And words, the most eloquent words, just flowed like a river from his mouth.
और बहुत ही अच्छे शब्द जो हैं उसके मुख से नदी के समान प्रवाहित होने लगे.
And it was so powerfully strong as he spoke that no one could hear anything else.
और वो इतने शक्तिशाली था कि कोई व्यक्ति और कुछ नहीं सुन सके.
And he continued to recite his newly created poetry, and he spoke on and on and on for over 3 hours.
और वो बोलते गए इस अपनी नई कविता को 3 घंटे के लिए.
And all of the students, they were struck with wonder. They had never heard such a voice. They had never heard such poetry in such refined decorated language.
और वो सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे कविता और ऐसे सुंदर मीठी भाषा कभी नहीं श्रवण की थी.
They began to praise how wonderful what human being could possibly speak such words.
वे सब जो है प्रशंसा करने लगे कि कितना सुंदर है ये कितना सुंदर है कौन मानव ऐसी रचना कर सकता है.
And finally, after hours and hours and hours, he ended his poem.
और फिर कई घंटों के बाद जो है उन्होंने अपनी कविता का अंत किया.
And Lord Chaitanya very pleasingly began to speak.
और श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्नता से बोलना शुरू किया.
He said, "Your poem is so elevated that none of us could understand a word of it."
आपकी कविता इतनी अच्छी है कि हमें से कोई समझ नहीं पाया आपने क्या कहा.
Can you kindly explain?
क्या आप कृपया करके बतला सकते हैं?
And then, with great, great confidence and pride, he began an explanation.
और फिर बड़े अभिमान से उन्होंने समझाना शुरू किया.
And within a few seconds, Lord Chaitanya, Nimai Pandit, interrupted him.
और कुछ ही सेकंड्स में निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रोक दिया.
And he said, "I find many faults in this explanation and in this poetry."
मैं ये देखता हूँ कि इस कविता में और जो समझा रहे हैं उसमें कई दोष हैं.
"I find faults in the beginning, in the middle, and in the end."
शुरुआत में, बीच में और अंत में जो है दोष दिखाई पड़ रहे हैं मुझे.
"Please explain what are the virtues and what are the faults of your poem."
कृपया बताइए कि इसमें गुण कौन से हैं और दोष कौन से हैं.
And the Digvijay Pandit, he had never heard anyone accuse him of committing a mistake in his whole life.
और दिग्विजय पंडित ने जीवन में कभी ऐसे किसी व्यक्ति ने ऐसे बताया नहीं था कि आपके दोष हैं.
He said, "There are no mistakes in my poem."
वो बोले कि मेरी कविता में कोई गलती नहीं है.
"Where do you find a mistake?"
कहां पर आपको गलती दिखाई पड़ रही है?
And Lord Chaitanya began to recite perfectly certain verses of his poem.
और श्री चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल अच्छी तरह से कोई कोई जो अंश है कविता के गाने लगे.
And Digvijay Pandit said, "How did you remember? I recited like the raging wind."
और चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं तो हवा की गति से गा रहा था और फिर आपको कैसे याद हो गया?
Nimai Pandit replied, "Just as you have the gift of being able to recite such poetry, I have been given the gift by the grace of God of being Shrutidhar. Anything I hear, I remember."
तो निमाई पंडित ने बताया कि जैसे आपको भगवान ने शक्ति दी है कविता की रचना करने की, ऐसे मुझे भगवान ने श्रुतिधर बताया है, यानी जो भी चीज मैं श्रवण करता हूँ मुझे याद हो जाता है.
And he began to explain certain mistakes within his composition.
और वो बताने लगे कि ये गलतियां हैं आपकी रचना में.
And as Digvijay Pandit tried to explain, every time he tried to explain, Nimai would find more and more mistakes and completely defeat him.
और जितना ज्यादा वो दिग्विजय समझाने का प्रयास करते हैं, निमाई पंडित दोष बतलाते और इस तरह से उसको परास्त करते
हैं. And he would try to explain again, and Nimai would defeat him, and he was powerless.
और इस तरह से वो फिर से समझाने का प्रयास करते और फिर से निमाई उसको परास्त करते, इस तरह से वो शक्तिहीन हो गए.
And Nimai invited, "Now you continue to give your explanations."
और फिर निमाई ने कहा कि और आप और समझाइए.
And he could not speak a word.
और फिर वो एक शब्द भी बोल नहीं सके.
He was praying to Goddess Saraswati, "Save me, save me."
वो सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ.
Never before in his entire life was he speechless.
कभी ऐसा उसके जीवन में हुआ नहीं कि वो बिल्कुल मुक बन गए हों.
He did not know where he was, he did not know who he was, and he did not know what to say.
उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, कौन है और क्या बोलना चाहिए.
He was completely confused, bewildered, and defeated.
पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए, मोहित हो गए और परास्त हो गए.
At that time, the young students began to laugh.
और उस समय सब शिष्य जो है हंसने लगे.
And Nimai Pandit told them, "Do not laugh."
और Nimai Pandit ने उनसे कहा, आप हंसिए मत.
And then, with great compassion and grace, he said, "Panditji, you have composed a very nice poem, but you have not answered my questions properly. Now it is very late, and you have been speaking for so long, you must be very tired. So please kindly go home and get nice rest and study your books, and tomorrow come and answer my questions.
और निमाय पंडित ने बताया कि अभी बहुत देर हो गई है, अभी आप जो है जाइए, आराम करिए और फिर कल मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए.
And then Nimai and his friends, they offer their obeisances to Mother Ganga, and they all went to their respective homes.
और निमाय और उनके मित्रों ने गंगा जी को प्रणाम किया और वे अपने-अपने घर चले गए.
And the Digvijay Pandit was devastated.
और दिग्विजय पंडित जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो गए.
He went to his home and he couldn't understand. Have I made some offense to the goddess Saraswati that she did not appear to give me words? What have I done wrong? Why has she abandoned me? How is it that I have defeated the greatest, most learned and wise scholars of all ages, and this mere teacher of grammar have left me speechless?
वो घर जाकर सोचने लगे कि मैंने क्या गलती की है, मैंने कोई अपराध किया है, ये कैसे हो गया कि मैं जो है वो किसी ने अभी तक हराया नहीं था और मैं अभी पराजित हो गया, ये कैसे संभव है.
He began to perform so many rituals and offer so many mantras and so many prayers to the goddess Saraswati.
वो कई रूप से रीति रिवाज करने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे, सरस्वती की जो है अर्पण करने लगे.
And then he fell asleep.
और फिर वे सो गए.
And in his sleep, the beautiful and merciful goddess Saraswati appeared before him.
और स्वप्न में जो है सरस्वती जी प्रकट हुए.
And she told him that that person who has defeated you is the Supreme Personality of Godhead.
और उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें पराजित किया है वो स्वयं भगवान है.
He is the Lord of all lords.
वो सब स्वामियों के भी स्वामी हैं.
I am eternally his servant.
और मैं हमेशा उसकी दासी हूँ.
Whatever power I have of learning and wisdom, I derive by his blessings.
और जो भी मेरे अंदर जो शक्ति है, विद्वता है, वो उनके ही कृपा से है.
What to speak of me and you? Even the Vedas personified are speechless when they stand before the Supreme Lord.
और मेरे और आपका तो कहना ही क्या, जो मूर्तिमान वेद हैं, वो भी भगवान के सामने मुक बन जाते हैं.
Even Anant, Shesha, Brahma, Shiva and all the greatest of the gods, even they become powerless to speak if the Lord does not give them power.
और अनंत शेष ब्रह्मा जी और शिव जी और कोई भी हो, वो भी कुछ नहीं बोल सकते अगर भगवान उन्हें शक्ति प्रदान नहीं करते.
That Nimai Pandit who has appeared as a beautiful young Brahmin, let me tell you the truth about him.
ये जो निमाय पंडित है जो कि एक ब्राह्मण के रूप प्रकट हुए हैं, उनके तथ्य मैं बताता हूँ.
Previously he appeared as a great boar, Varaha, and lifted the earth between his tusks.
बहुत समय पहले वो जो है वराह देव के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने धरती को जो है धारण किया था.
He appeared as Lord Narasingha and protected his devotee Prahlad.
और वो नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए.
He appeared as Vamana Dev and fulfilled all the desires of Bali Maharaj.
और वो वामन देव के रूप में प्रकट होकर बली महाराज की सारी इच्छाओं को पूर्ण किया.
He appeared as Matsya and very playfully played within the waters of devastation.
और वो मत्स्य अवतार में प्रकट हुए और प्रलय के पानी में जो है वो आनंद विहार करने लगे.
He appeared in so many wonderful forms like Lord Ram Chandra and killed Ravana.
और वो बहुत सुंदर रूप में प्रकट हुए भगवान राम के रूप में और रावण का वध किया.
And in his original form he appeared as Krishna.
और उनका मूल स्वरूप में वो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए.
And performed so many beautiful pastimes on this earth.
और इस भूमि पर उन्होंने बहुत ही सुंदर लीलाएं की.
You should know that through your chanting of your mantras and through your prayers to me, the real blessing I have given you in return is not
great scholarship and victory over all your opponents.
तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी जो प्रार्थना है उसका फल ये नहीं कि जो विद्वता मैंने तुम्हें दी है या दूसरों को पराजित करने की शक्ति दी है.
Today, the fulfillment of all of your worship to me has borne fruit.
आज जो है तुमने जो मेरी जितनी आराधना की है उसका सही फल तुम्हें प्रदान हो गया है.
Because today I have given you the true gift that is worthy.
आज मैंने तुम्हें वो भेंट दी है जो वास्तव में मूल्यवान है.
Today you have seen the personality of Godhead.
आज आपने स्वयं भगवान के दर्शन किए हैं.
You should know that this is my benediction to you.
आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरा आपके प्रति आशीर्वाद है.
My benediction to you is that you were defeated by him.
मेरा आशीर्वाद ये है कि आप उनके द्वारा पराजित हो गए.
When the Lord challenges, even I cannot stand on your tongue before him.
अगर भगवान चुनौती करते हैं तो मैं भी उनके सामने आपकी जीवा पर नहीं प्रकट हो सकती.
You should know that the ultimate gift that one can gain from any demigod is the realization that Krishna is the ultimate truth and give us the understanding to surrender to Krishna.
हमें समझना चाहिए कि जो सबसे ऊंचा भेंट जो देवता दे सकते हैं वो ये है कि ये समझाना कि कृष्ण ही परम सत्य हैं और उनकी शरण में ले जाना.
If one really and truly pleases any devata, this is the gift that that devata will give, the understanding to surrender to Krishna.
अगर सही में हम किसी देवता को प्रसन्न करते हैं तो सही भेंट वो देवता ये देता है कि हमें समझाता है कि कृष्ण की स्थिति को.
Demigods are not pleased to give you material wealth or material opulence.
देवता जो है आपको भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करके प्रसन्न नहीं होते.
Because they know quite well that it will only be a source of misery and entanglement for you.
क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीजें आपके लिए दुख और बंधन का कारण बनेंगी.
The goddess Saraswati told Digvijay Pandit that you should go to Nimai Pandit and you should surrender your life to him unconditionally.
सरस्वती माता ने कहा कि आप निमाई पंडित पर जाकर उनकी शरण में समर्पण कर दो.
But do not tell anyone what I have said. Disappeared.
और फिर वो अदृश्य हो गई.
And then he woke up.
और फिर वो जागे.
And immediately the sun was just to rise, and he ran right to the house of Nimai Pandit.
और सूर्य उस समय उदय हो ही रहा था और वो दौड़े दौड़े निमाय पंडित के घर पहुंचे.
Nimai Pandit came out and he offered his prostrated dandavat obeisances.
और उन्होंने निमाय पंडित को अपने दंडवत प्रणाम किया.
Nimai Pandit picked him up and embraced him.
और निमाय पंडित ने उन्हें उठाकर गले लगाया.
He said, "What are you doing? You're such a big, great, elderly, learned scholar. Why all of a sudden you're offering your obeisances like this?"
तो कहने लगे कि आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप क्यों इस तरह से दंडवत प्रणाम कर रहे हैं.
He told him that the fruits of all my worship of Saraswati has come to me because she has revealed to me that you are the absolute truth. You are the Lord of all lords. You are Krishna, the personality of Godhead.
और उन्होंने बताया कि आज मेरे सारे विद्वता का फल मुझे प्रकट हो गया क्योंकि मुझे पता चल गया कि आप ही स्वयं श्री कृष्ण हैं.
And he began to praise the Lord that how expertly you completely defeated me in a solitary place with only a few people, and you preserved my pride.
और वो भगवान की प्रशंसा करने लगे कैसे आपने एकांत स्थान में मुझे पराजित किया और मेरे मान को बनाए रखा.
This was the power of Lord Chaitanya.
ये चैतन्य प्रभु की शक्ति है.
Previous avatars, they killed the demons.
जो पहले दूसरे अवतार हैं वो असुरों का वध कर देते.
But Lord Chaitanya very mercifully transformed them into devotees by compassion.
लेकिन चैतन्य प्रभु बड़ी दया से उनको जो है भक्त बना देते दया से.
He didn't kill the demons' pride, but in this case, he purified it.
और उन्होंने असुर का वध नहीं किया बल्कि उसका शुद्धिकरण कर दिया.
And in this way, Digvijay Pandit surrendered his life unconditionally to the service of Lord Chaitanya.
इस तरह दिग्विजय पंडित ने जो है भगवान चैतन्य प्रभु की जो है समर्पण कर दिया.
And Lord Chaitanya explained to him that
high learning, wealth, opulences of these sorts that you can get from worshiping the various demigods. He said they have no value because at the time of death you cannot take any of it with you.
चेतनाम्रु बताने लगे कि उच्च विद्वता और संपत्ति से कोई कीमत नहीं है क्योंकि मृत्यु के समय आप इन्हें साथ नहीं ले जा सकते.
You should worship Krishna.
आपको कृष्ण की आराधना करनी चाहिए.
You should always remember Krishna and chant his holy names.
आपको हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और उनका नाम गाना चाहिए.
You should know there is only one wealth of any value in this entire existence.
आपको समझना चाहिए कि पूरे अस्तित्व में एक ही संपत्ति है जिसकी कोई कीमत है.
And that is devotional service to Krishna.
और वो है कृष्ण के प्रति भक्ति.
And you should not concern yourself with anything else.
और आपको और किसी चीज की परवाह ही नहीं करनी चाहिए.
Because it is only the loving service of Krishna that gives joy and happiness to the heart.
क्योंकि भगवान की प्रेममय सेवा ही यह हृदय को आनंद प्रदान कर सकती है.
Do not waste a moment of your life in pursuit of anything else.
अपने जीवन का एक क्षण भी किसी दूसरी चीज के पीछे मत लगाओ.
When he embraced the Digvijay Pandit, he became filled with ecstatic love for Lord Chaitanya.
तो दिग्विजय पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति भावमय प्रेम से भर गए.
Upon hearing these instructions, the Digvijay Pandit, Keshav Kashmiri, he very quietly left behind all his beautiful ornate elephants and horses and palanquins and all of his followers and all of his worshippers, and he left Navadvip alone.
उन्होंने जो है ये इतना परास्त होने के बाद सब हाथी घोड़े सबको त्याग दिया और अकेले ही नवद्वीप छोड़कर चले गए.
Continuously for his whole life worshipping Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu within his heart of hearts.
अपने पूरे जीवन भर उन्होंने हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना की.
And constantly following his instructions to always remember him by chanting his holy names.
और हमेशा जो है वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका नाम कीर्तन करते. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
It is said in Srimad Bhagavatam that one who waters the root of a tree automatically gives nourishment to all the leaves and the flowers and the twigs of the tree.
श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डालता है तो अपने आप पत्ती और टहनी और सब भागों को पानी मिल जाता है.
And one who supplies food to the stomach gives nourishment to every part of the body.
और जो कोई व्यक्ति भोजन पेट को देता है तो हर एक शरीर के भाग को जो है भोजन का फायदा मिल जाता है.
In the same way, one who worships the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, Sri Krishna, automatically does the greatest service to all of the demigods.
जो व्यक्ति इस तरह से अगर कृष्ण की आराधना करता है तो अपने आप वो सारे देवताओं को भी सेवा कर रहा है.
We should dedicate our lives to striving for that which is eternal.
हमें अपना जीवन उस चीज के लिए अर्पण करना चाहिए जो कि शाश्वत है.
By building castles in the sand of this material existence, we should know that at any moment the waves from the ocean of time will wash it all away.
इस भौतिक अस्तित्व के जो दुनिया है उसमें अगर जो है रेती के जो है घर बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस जो समय की लहरें आएंगी उसे सब नाश हो जाएगा.
कृष्ण says यान्ति देव वता देवां पितृन यान्ति पितृन वता भूतानि यान्ति भूतेश्या यान्ति माज्यजिनोपिमं. Those who worship demigods go to demigods. Those who worship the forefathers and ancestors go to them. Those who worship the Buddhas go to them. And those who worship me will come to me.
Krishna Bhagavan batate hain ki jo devtaon ki aradhana karte hain devtaon ke paas jate hain, jo pitron ki aradhana karte hain pitron ke paas jate hain, aur jo meri aradhana karte hain wo mere paas aate hain.
Krishna's abode is the eternal abode, Vaikuntha.
Krishna ka dham jo hai wo Vaikuntha dham hai, nitya dham.
We should make our goal of life the lotus feet of Krishna.
Hame apne jivan ka uddeshya Krishna ke charan kamal banana chahiye.
And we must respect all demigods and all gods and goddesses because they are Krishna's empowered servants.
और हमें देवी और देवताओं के आदर करना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा शक्ति प्राप्त किए हुए सेवक हैं।
But we should not be foolish and worship them for the material objects of this world.
लेकिन हमें इतना मूर्ख नहीं होना चाहिए कि हम भौतिक लाभ के लिए उनकी आराधना करें।
We should aspire for that which is permanent, eternal, and full of joy.
हमें उन चीजों के लिए अभिलाषा करनी चाहिए कि जो कि नित्य है और आनंद से भरा हुआ है।
And how to worship Krishna?
और कृष्ण की आराधना कैसे की जाए?
In this most beautiful chapter, the most confidential knowledge, Krishna explains, Patram pushpam palam toyam yome bhakti prayachchati taraham bhakti paharitam ashnami prayatatmanaha. That if one offers me with love and devotion, even a leaf, fruit, flower or water, I will accept it.
इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि अगर कोई प्रेम से भक्ति से मुझे पत्र पुष्प या फल या जल अर्पण करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।
In various karmakandic forms of religion, we perform so many yajnas and rituals to somehow get the favor of a superior power.
जो है अनेक कर्मकांड के द्वारा हम अनेक रीति रिवाज करते हैं जिससे कोई श्रेष्ठ शक्ति की जो है कृपा प्राप्त करने के लिए
But in bhakti, these things are not required.
लेकिन भक्ति में इन चीजों की आवश्यकता नहीं है
If simply one performs one's duty in a spirit of devotion and offers the fruits of one's duties to the service of God, associates with the Lord's devotees and chants his holy names, One can achieve the ultimate perfection of eternal happiness in spiritual consciousness.
अगर सिर्फ व्यक्ति कृष्ण भावना से अपने कर्तव्य को करता है, तो वो जीवन की परम सफलता को कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है।
It is so simple.
ये इतना सरल है।
And Lord Chaitanya Mahaprabhu has made it all the more simple.
और चैतन्य महाप्रभु ने उसे और भी ज्यादा सरल बना दिया है।
Just serve devotees of the Lord, live pure. No illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating. Hear the glories of the Lord, remember the glories of the Lord, and chant His holy names.
एकदम शुद्ध जीवन बिताएं और नियमों का पालन करें, भगवान के गुणों का श्रवण करें और कीर्तन करें, भक्तों की सेवा करें. यही सरल तरीका महाप्रभु ने बताया है.
And if you follow this system, even if accidentally you make some mistakes. By the power of Krishna's name and the grace of his devotees, you will overcome all obstacles.
अगर हम ऐसा करते हुए कोई गलती भी कर बैठते हैं, तो भी कृष्ण के नाम की शक्ति से हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं.
That is the power of bhakti.
ये भक्ति की जो है शक्ति है.
So let us follow in the footsteps of Keshav Kashmiri.
हमें केशव कश्मीरी के चरण कमलों का अनुगमन करना चाहिए।
We have already spent so many lifetimes trying to acquire various powers and opulences.
हमने कई जीवन बिता दिए हैं, अनेक ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त करने में बिता दिए हैं।
We have already gotten so many benefits from so many gods for so many things of this world.
हमने जो है कई देवताओं से कई चीजें जो है प्राप्त किए हैं।
बहुनाम जनमाना मानते ज्ञान बम बपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ Let us come to the platform of real knowledge and now surrender to Krishna.
हमें सही ज्ञान के स्तर पर आकर कृष्ण को समर्पण करना चाहिए.
Krishna will give us the real love, the real wealth of prema, spiritual love.
कृष्ण हमें सच्ची संपत्ति दे सकते हैं और वो है कृष्ण का प्रेम.
That which gives us eternal joy.
वो हमें नित्य आनंद प्रदान कर सकता है.
Why should we waste another moment of our life in pursuit of anything else?
हम क्यों अपने जीवन का एक भी क्षण किसी और चीज के लिए बेकार करें?
Whether you are a brahmachari or a sannyasi or a grihastha, perform your duties under the guidance of the Lord's devotees, chant his holy names and make a permanent solution to the problems of life.
चाहे आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, आप जो है अपने भगवान का नाम लें और अपने कर्तव्य को करें और जीवन के अस्तित्व से जो है समस्याओं का हल प्राप्त करें.
एंड लुक फॉर योर हैप्पीनेस नॉट इन ऑल दोज डर्टी फिल्थी फॉर्म्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड दैट पीपल आर ट्राइंग टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड.
और उन चीजों में आनंद की खोज मत करो जो कि दुनिया के लोग कर रहे हैं, क्षणिक चीजों में.
कम टू नाइस गैदरिंग्स लाइक टुनाइट. Hear the glories of the Lord.
ऐसे सत्संग में आए जैसे आज हैं और भगवान के यश का गुणगान का श्रवण करें.
Dance in ecstasy, raise your arms and chant his holy names.
आनंद से जो है नृत्य करें और हाथ ऊपर करके कीर्तन करें.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम.
Translate? Nice. He's like Digvijay Pandit. He thought he was the world's best translator.
ये बता रहे हैं कि मैं दिग्विजय पंडित हूँ.
But Goddess Saraswati has left your tongue. He became speechless.
Hari
Bol. So this is very nice. We should all be very happy to be humbled by the Lord.
भगवान के द्वारा नम्र बनाए जाने पर हमें प्रसन्न रहना चाहिए.
Because only in a humble state of mind can we chant the holy name in such a way that Krishna is pleased.
क्योंकि सिर्फ मन की नम्र स्थिति में हम भगवान का नाम ऐसा गा सकते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो.
Let us seek the real wealth of Krishna consciousness.
हमें जो है कृष्ण के भगवान के बारे में जो सच्ची संपत्ति है उसको प्राप्त करना है.
Thank you very much.
धन्यवाद.
At this time, we would like to invite everyone to participate in the great gift that Lord Chaitanya has given to the world.
इस समय हम चाहेंगे कि हम सब भाग लें उस महान भेंट में जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है.
Through the chanting of Krishna's holy names, in the association of devotees, the wealth of Krishna Prema is gradually awakened within our hearts.
भक्तों के संग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से जो कृष्ण भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो सकती है.
हरि नाम संकीर्तन is the yuga dharma for this age of Kali Yuga.
इस कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन जो है युग धर्म है.
हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा. It is the only means by which we could counteract the evil influences of this age of quarrel and hypocrisy.
यही तरीका है जिसके द्वारा हम कलयुग के दुष्प्रभावों को जो है निकाल सकते हैं.
We should dedicate not only one day but our whole lives to practicing the chanting of Krishna's name.
Krishna ke naam sankirtan jo hai sirf ek din nahi balki pure jeevan bhar hame karna chahiye.
And in this short life we can achieve the ultimate destination of the spiritual world.
Aur is chote se jeevan mein hum antim lakshya adhyatmik dham ko prapt kar sakte hain.
So let us put aside all our illusory conceptions of what is happiness and find our real happiness in serving the Vaishnavas and chanting Hare Krishna.
हमें जो है सब अपने स्वयं के जो भ्रमिक जो सुख है उसका त्याग करके इस भगवान के नाम संकीर्तन में वैष्णव की सेवा में लगना है.
You can teach them how to chant.
हरे कृष्णा. तो अभी हम श्री प्रभुपाद और महाराज और श्री राधा गोपीनाथ भगवान के आनंद के लिए संकीर्तन करेंगे. तो संकीर्तन की विधि इस प्रकार है कि पहले जब महाराज गाएंगे तब आप सब हाथ के द्वारा अपने हृदय के आंगन में प्रवेश करने देंगे. बड़े ध्यान पूर्वक हर एक शब्द को हर एक अक्षर को श्रवण करेंगे. और जब उसके बाद जब आप गाएंगे तब आप दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे जिस तरह से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए आह्वान किया था. उस तरह से दोनों हाथ को ऊपर उठाकर उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करेंगे जिससे पूरे बंबई में पूरे ब्रह्मांड में भगवान का नाम संकीर्तन फैल सके. और इस तरह करते करते अपने दाएं पैर को बाईं तरफ और बाएं पैर को दाहिनी तरफ करेंगे और सब एक साथ अपने सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए सुंदर रूप से कीर्तन करें जिससे राधानाथ महाराज श्री प्रभुपाद और राधा गोपीनाथ भगवान प्रसन्न हो सके. तो अभी कृपया सब लोग खड़े हो जाइएगा.